ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, यह बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। बच्चे, इस नाटक का, इस ड्रामा का आनंद लो, मोक्ष के पीछे कहाँ लगे हो तुम। अगर मोक्ष चाहते हो तो तब मांगना जब तुम्हें मैं राजगद्दी पर बिठाऊंगा, सारे सुखों में विराजमान करूंगा, दुख का नाम निशान नहीं होगा, सुख का महासागर होगा तुम्हारे आजू बाजू में। तब तुम मुझे कहना बाबा मोक्ष चाहिए, दूंगा निश्चित। विश्व महाराजन बने हो उस घड़ी मोक्ष मांगना, मैं देने के लिए तैयार। जब जीवन में पूरी खुशहाली है तब मोक्ष मांगना, मैं तैयार हूं। बच्चे, दुख आने के बाद मोक्ष क्यों मांग रहे हो, क्यों भाग रहे हो अपने रिटर्न से? तुम कहां भाग नहीं सकते बच्चे, इस सृष्टि में। यह लोक छोड़ के सूक्ष्म लोक में चले जाओगे, निराकारी में तो जा नहीं सकते जब तक ड्रामा ओवर नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है सूक्ष्म लोक में तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा? नहीं बच्चे, जो कुछ है चुकतू तो करना ही पड़ेगा। तुम कहीं नहीं जा सकते। बहुत बार बहुत सारी आत्माओं को लगता है, कि शरीर छोड़ दिया, मन छूट गए, बच्चे और कठिनाई में आए, और संकट में आए। बच्चे, जो कुछ है हंसते खेलते यहाँ चुकतू करना है। इस संगम में, कलयुग के अंत में, तुम्हारे साथ जो कुछ घटित हो रहा है वो तुम्हारा रिटर्न तुम्हें मिल रहा है, इसलिए उसे इनकार मत करो, जो है उसका स्वीकार करो। जो कुछ भी है, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर बात तुम्हारा रिटर्न है बच्चे, हर बात। कभी चलते चलते नारियल के पेड़ के नीचे से गुजरते हैं, 10 लोग गुजर रहे और एक व्यक्ति के सिर पर नारियल गिर जाता है। बच्चे, और कुछ नहीं है, नारियल के पेड़ के साथ का कार्मिक अकाउंट चुकतू हो गया। 9 के सिर पर या 9 में से किसी के सिर पर क्यों नहीं गिरा, तेरे सिर पर ही क्यों गिरा? क्योंकि अकाउंट था। तू किसी को दोष नहीं दे बच्चे, अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं बहुत सारे, और तूने किए हैं, कोई और नहीं आया है अकाउंट क्रिएट करने के लिए। इसलिए बच्चे, तेरे दुखों को तू पूर्ण जवाबदार है, सुखों को भी तू ही जवाबदार है। भगवान को अगर किसी को देना होता तो वो वही देगा जो उसके पास है। भगवान के पास कोई दुख नहीं है, तो भगवान दुख कहाँ से देगा? उसके पास सुख शांति है, वही देगा, और सबको दी भी थी। पर देहाभिमान में आकर अपने आप को भूल कर विकर्म कर लिए। इसलिए बच्चे, इस ड्रामा से भागो मत, इस नाटक से भागो मत, पार्ट प्ले करो। जो कुछ मिला है ठीक है, महाकठिन दुख में, नरक में तू हो सकता है, संकल्प निकट कर रहे हैं, पर बच्चे भाग मत, थक मत। जो है वो तेरा है, जो कुछ भी है, इसलिए चलता रहे। यह बना बनाया नाटक है, इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। कोई नहीं छूट सकता बच्चे, हर किसी को अपना पार्ट बजाना ही है। कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास पार्ट बजाने में, किसी भी प्रकार से कोई ऑप्शन नहीं। समझ की बात है बच्चों। सारे चिंतन करो पूरा पूरा, देखो अपने आप को, कहाँ हो तुम, क्या कर रहे हो। बच्चे सजग हो जाओ, अभी समय समाप्ति का आया है। बच्चे कभी तुझे लगा है चलते चलते कि समय समाप्ति का आया है? कभी तेरे मन में संकल्प आया बहुत गहरा, जिस संकल्प ने तुझे समय से वैराग्य दिलाया हो समय को लेकर? ऐसा कोई संकल्प कभी आया है अति गहरा, जैसे ब्रह्मा बाप के मन में संकल्प उठा कि अभी समय समाप्त हुआ है और ब्रह्मा बाप ने तत्क्षण सब त्याग दिया सेकंड में और बाप के बन गए? ऐसा संकल्प कभी उठा नहीं बच्चे तेरे मन में? विचार कर, क्योंकि जब तक तू जागता नहीं तब तक जो कुछ कर रहा है वो सब व्यर्थ है। जागने के बाद जो तू करेगा वही समर्थ होगा। देख तू जागा है क्या? जागने वाला उस दिशा में दौड़ता है जहां उसे जाना है, जिस मंजिल पर उसे पहुंचना है। तू जागा हुआ नहीं है बच्चे। अगर तू जागा हुआ होता तो सुबह उठने से लेकर रात तक आत्मिक स्थिति के अलावा तुझे और कुछ नहीं सूझता। तू यही कहता, बस हो गया खाना पीना, इसी खाने पीने में, वस्त्र अलंकार में, आराम में जिंदगी चली गई, नरक बन गई जिंदगी। होगा कुछ, मिलेगा कुछ तो खाएंगे, पर हमें इसमें बैठना है, अपने आप को पाना है। अभी मर गई मेरी भूख बाहर की, अभी एक ही भूख है मुझे, अपने आप को पाना है, एक ही भूख है। तुझे लगी है कभी ऐसी भूख? ऐसा एक दिन तेरे जीवन में है सुबह उठने से लेकर रात सोने तक तू बड़ी गहरी चिंता में रहा कि कब पाऊंगा मैं अपने आप को, कब उस अवस्था को उपलब्ध हो जाऊंगा? सभी उस दिन तुझे कह रहे, क्या हो गया, आप बड़े चिंतित नजर आ रहे हो, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? ऐसा कोई दिन है बच्चे तेरे जीवन में? बच्चे माया ने तुझे सुला दिया है। जब तक आत्मिक स्थिति को लेकर तुझे चिंता पैदा नहीं होती, तेरे देह का वजन घटता या बढ़ता नहीं है, तेरी भूख प्यास मिटती नहीं है, तेरी नींद उड़ती नहीं है, तब तक तू सोया हुआ है गहरी नींद में, तुझे कल्पना नहीं है। और तू जो आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर रहा है वो तेरा सपना है, उस नींद में आया हुआ तेरा सपना है। ये जो चलते चलते तू जो अभ्यास कर रहा है ये तेरा सपना है बच्चे, नींद का सपना। गहरे सपने में है तू, होश में आ, सपने से बाहर आ, इंसेप्शन में है तू। चेक कर अपने आप को, तुझे लगता है सपने में जो है वो सत्यता में आ जाएगा? समझ है बच्चे, व्यक्ति धन कमाने के लिए भी 8 घंटा मेहनत करता है, तुझे तो अपने आप को कमाना है। तू ही तेरा धन है सबसे बड़ा। तू कौन सा धन खोज रहा है? ज्ञान धन, परमात्म धन, योग धन, वो तो बाद की बात है। तूने पा भी लिया ज्ञान धन, परमात्म धन, योग धन, किसको देगा तू? लेने वाला कौन है तेरे पास ये सब? क्योंकि तू उपस्थित नहीं है। ज्ञान पाके देगा किसको? परमात्मा को पाकर देगा किसको, योग करके देगा किसको, क्योंकि तू ही तेरे पास नहीं है। बच्चे लगी है कभी चिंता कि तुझे परिवार ने पूछा हो क्या हो गया, अब बहुत दुबले पतले हो गए हो, बात क्या है? समझ है बच्चों, चिंतन करना। डिप्रेशन जो है ना, या तो वेट बढ़ाता है या वेट घटाता है। इसलिए महान सन्यासियों को देखो, या तो अति दुबले पतले मिलेंगे, हड्डी पसली एक, या फिर अति तबीयत होगी। जो साधारण है ना वो गृहस्थी है, ध्यान में रखना बच्चे। जो परफेक्शन में है वो गृहस्थी है। सन्यासी कभी फिजिकल रूप से परफेक्शन में नहीं होता, या तो दुबला पतला या मोटा, दोनों में से एक। तू चेक कर अपने आप को, तू क्या है, तू देख। बात वजन घटाने की नहीं है, बात उस चिंता की है जिसको पाना है। चिंता, यह बाप साफ कहेगा, अभी डिप्रेशन में जाओ आत्मिक स्थिति के लिए। अति चिंता में जाओ, चिंता क्या करती है, दिन भर मन में उसी विचार को घोटती रहती है, घुमाती रहती है, फिराती रहती है। चिंता है वो। तुझे लगी है चिंता आत्मिक स्थिति की, दिन भर वही विचार, कैसे आएंगे, कब आएंगे, किस विधि से आएंगे, कौन सी मेहनत से आएंगे, क्या क्या करें, क्या ना करें। बच्चे देखना, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, या फिर ग्रेजुएशन, मास्टर, पीएचडी, जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम हैं, उस बोर्ड एग्ज़ाम में जो अच्छे मार्क्स निकालने वाले बच्चे, स्कोर करने वाले, उनको भी आप देखना, उनको भी आप देखना, उनका वजन घटा हुआ मिलेगा परीक्षा के समय। ध्यान से चेक करना उन्हें, उनका आपको वजन घटा हुआ मिलेगा। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ कि वजन घट गया? चिंता किस बात की, कि कैसे मार्क्स लाने हैं, कैसे पास होना है। समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर। अच्छी बात को पाने के लिए चिंता उत्पन्न होना अच्छा लक्षण है। बिना चिंता के कुछ नहीं मिलता। चिंता कोई अशुद्ध नहीं है, बस किस बात के प्रति है। बच्चे कलयुग का संसार है, बिना चिंता के यह कुछ नहीं मिलेगा। चिंता अशुद्ध नहीं है, ध्यान में रखना। किस बात के प्रति है इसके ऊपर निर्भर है, शुद्ध है या अशुद्ध है। आप ही बताओ, परमात्मा की याद को लेकर अगर कोई चिंतित है कि मुझे याद करने का समय नहीं मिल रहा, तो चिंता शुद्ध है या अशुद्ध है? और संसार को लेकर कोई चिंतित है तो अशुद्ध है या शुद्ध है? इस देह और देह के संसार के किसी भी बात को लेकर की हुई चिंता अशुद्ध है। आत्मा और परमात्मा की याद, इस बात को लेकर की हुई चिंता शुद्ध है। आपकी चिंता कौन सी है, देखो जरा ध्यान से। उस चिंता के ऊपर सारा खेल है, चिंता के ऊपर। बच्चे कलयुग में चिंता के बिगर कार्य नहीं चलता। कैसे भी करके चिंता चाहिए, चाहिए ही चाहिए, ध्यान में रखना। चिंता नहीं है ना बच्चे, तो तुम सुबह टाइम पर नहीं उठोगे। चिंता उठाती है। चिंता नहीं है तो घर बार, नौकरी धंधा, परिवार नहीं संभालोगे। चिंता नहीं है तो पुरुषार्थ नहीं करोगे। है चिंता ब्रह्मा बाप समान बनने की, चिंता की एक लेवल के बाद उसे चिंता नहीं कहा जाता, वो सत्य अवस्था है आत्मा की। चिंता रियलाइजेशन कराती है जब शुद्ध के लिए होती है, आंखें खोल देती है। चिंता समाप्त हो जाए तो बच्चे तुम कुछ भी करोगे और कहोगे हम बेफिक्र बादशाह हैं, फिर बच्चे गड़बड़ हो जाएगी पूरी पूरी। अच्छे बातों के लिए चिंता करो। ध्यान में रखना कलयुग का स्वभाव और संस्कार, पता है आपको कलयुग का स्वभाव है चिंता और संस्कार है डर, ये दोनों उपस्थित हैं। इन दोनों के बिना कलयुग नहीं चलता, इन दोनों को निकाल दिया जाए तो सतयुग बनेगा। अभी इन्हीं को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि तुम यहां कलयुग को नहीं बदल सकते, न उसके स्वभाव और संस्कार को बदल सकते हो। उसका स्वभाव अगर चिंता है तो करो चिंता आत्मिक स्थिति के प्रति, और करो पैदा डर याद के प्रति, हो जाएगा। कलयुग भी शांत और तुम्हारा भी काम बन गया। कौन कहता है अशुद्ध है? डर समझ की बात है बच्चे, वो कहा किस घड़ी है, किस परिस्थिति में है, किस बात के लिए है, इस पर उसकी शुद्धता और अशुद्धता निर्भर है। ध्यान में रखना बच्चे। इसलिए जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हें दुनिया ने सिखाया है निगेटिव है, उसी निगेटिव को तुम पॉजिटिव क्रिएशन के लिए इस्तेमाल करो। बात समाप्त हो गई। सब कुछ जो तुम्हारे पास है, अभी ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ से आया है? धरती की पेट से। धरती में ये रेडी नहीं है, पर सारा मटेरियल धरती से निकाला है, या तो मिट्टी से या पेड़ पौधों से। बाकी कहाँ से आया है समझ की बात है। और उस धरती को कोई कीमत नहीं, सोने की वैल्यू बहुत है, मिट्टी की वैल्यू शून्य है, पर सोना उसी मिट्टी से पैदा हुआ है। समझ की बात है बच्चों। इसलिए देखो चिंता किस बात के लिए है, डर किस बात के लिए है, देखो चिंतन करो बच्चे। पूर्ण रूप से होना चाहिए चिंता और डर, आज हर किसी के पास है, बस अपने लिए इस्तेमाल करो, बात खत्म। जिस क्षण बच्चे तुम आत्मिक स्थिति के लिए चिंता करना शुरू करोगे, पता है क्या होगा? पर सच वाली चिंता, हाँ, आत्मिक स्थिति के लिए जैसे तुमने चिंता क्रिएट करना शुरू कर दिया, जो कली पुरुष है ना, वो तुम्हें सुख देना स्टार्ट करेगा, ताकि तुम चिंता छोड़ दो। तुमने उसी के प्लस पॉइंट को पकड़ के अपने को प्लस में लेके जाने की यात्रा स्टार्ट कर दी। अभी वो डरने लगा, अभी मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो आया हूं चिंता में डालने के लिए हर किसी को, पर ये खुद चिंता कर रहा है अच्छा बनने की। अब मैं इसे कैसे पकड़ूं? अभी उससे सवाल उठा, अब क्या करूं? क्योंकि गुण तो मेरा है चिंता, पर उसी चिंता से बन तो रहा है ईश्वर का, ईश्वर समान। फंस गया बच्चे, चतुराई करनी पड़ती है माया से, पूरी चतुराई। ऐसे डर याद के लिए, समझ की बात है बच्चे, ध्यान में रखना। महापाप के कलयुग से महापुण्यवान सतयुग जन्मता है। सेम बात है, चिंता से तू निकलेगा बाहर। चिंता मत कर, चिंता का कोई बीज नहीं रहेगा तुझमें, क्योंकि शुद्ध के लिए जो चिंता की जाती है उसमें निगेटिविटी कभी नहीं बचती किसी भी प्रकार से। इसलिए बच्चे, है तुझे चिंता आत्मिक स्थिति की? कभी आई है? कभी डिप्रेशन में गया है? कभी टेंशन में आया है? परिवार वाले क्या कहेंगे? क्या हो गया आपको? टेंशन में हो? क्या कहेंगे? हम हमारी उच्च अवस्था को उपलब्ध नहीं हो पा रहे इसलिए चिंता कर रहे हैं। वो भी आपको कहेंगे चिंता मत करो, आप जितना चाहे पुरुषार्थ करो, घर हम संभालते हैं, आप पुरुषार्थ करो, आप उस अवस्था को प्राप्त हो जाओ। बन गए साथी सहयोगी, लक्षण तो दिखे तुझमें कि तू सच में वो पाना चाहता है। लक्षण ही नहीं है, कौन तुझे मदद करेगा? लक्षण तो दिखने चाहिए। समझ की बात है बच्चे, ब्रह्मा बाप को भी बड़ी चिंता थी आत्मिक स्थिति की, विराट चिंता थी। आप नहीं जानते, बहुत चिंता में रहते थे कि कब आएंगे आत्मिक स्थिति में। निवाला उतरता नहीं था नीचे, क्योंकि परमात्मा की श्रीमत है, आत्मिक स्थिति में आना है। ये मत समझो कि मैं प्रवेश हुआ और तुरंत आत्मिक स्थिति में आए। बच्चे, ये जादू नहीं होता कभी भी। हर किसी को प्रयास करना है, जादुई खेल नहीं है यहाँ पे। बहुत चिंता में रहते थे, समझ की बात है। इसलिए ध्यान से देखना, ध्यान से। दो चिंता वाली आत्मा बताता हूँ मैं, दो। एक ब्रह्मा बाप, चिंता के कारण शरीर सूख गया। दूसरी मम्मा, चिंता के कारण शरीर बढ़ गया। एक ही चिंता, कब आएंगे हम हमारे स्वरूप में। एक ही चिंता है तुझे, समझ की बात है। चिंतन कर, तू ऐसे ही चल रहा है जैसे रास्ते चलते तुझे आत्मिक स्थिति मिल जाएगी किसी ठेले पर, किसी दुकान में। नहीं होता बच्चे, आत्मिक स्थिति मरने की चिंता के बराबर है। किसी ने किसी को कहा कि दो दिन में आप मरने वाले हो, शरीर छोड़ने वाले हो, उन दो दिनों में जो चिंता लगती है उतनी चिंता चाहिए, तब आत्मिक स्थिति को उपलब्ध हो जाओगे। इतनी गहरी चिंता, कुछ सूझे ही नहीं। एक अवस्था के सिवाय, कहते महात्मा बुद्ध जी की भी ऐसी अवस्था थी। आखिरी क्षणों में कहा कि अभी अन्न त्याग कर दिया है, या तो हम अपने आप को पालेंगे या शरीर छोड़ देंगे। पा लिया, शरीर छोड़ने तक की चिंता, तब बच्चे पालोगे। चलते चलते नहीं, चलते चलते रोटी भी नहीं मिलती बच्चे, ध्यान में रखना। उस अवस्था तक जाना पड़ेगा। कब लगी है तुझे ऐसी चिंता? है कोई तेरी यात्रा का ऐसा एक दिन, एक घंटा, एक घड़ी, 24 मिनट, जब तू गहरे डिप्रेशन में है, अपने आप को पाने के लिए, अपने आप की सोच में, कभी उस अवस्था में गया है क्या? समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर, और जब तक तू उस अवस्था में नहीं जाता, तेरा इस राह पर चलना व्यर्थ है। मैं सीधे कहता हूँ, एक तो संसार रूपी सब त्यागना पड़ता है, अपने आप को पाने के लिए बात वहां तक आती है कि शरीर भी त्यागना पड़े, ऐसी हालत हो जाती है, तब अपने आप को पाने की कुछ किरण नजर आती है। परमात्मा तो दूर है बच्चे, ये तो सिर्फ तुम्हारी चर्चा चल रही है, तुम जो तुम्हें पाना चाहते हो उसकी बात हो रही है। तुम कहाँ के हो? परमधाम निवासी। और तुम क्या पाना चाहते हो? तुम्हारी परमधाम निवासी स्टेट, अवस्था। तो बच्चे, परमधाम निवासी स्टेट में कलयुग और कलयुग का संसार कहाँ से आया? समझ है बच्चे, मूर्खता है सारी, कि कलयुग और कलयुग का संसार पकड़ के उस मूल वतन की अवस्था को पाना मूर्खता है। साफ साफ समझ की बात है बच्चे, कैसे पॉसिबल है? उस मूल वतन निवासी, मैं तेरी बात कर रहा हूं, मैं भी हूं पर मैं तेरी बात कर रहा हूं, उस मूल वतन निवासी के पास कलयुग का कुछ नहीं है बच्चे, इवन सतयुग का भी कुछ नहीं है। और तू कुछ पास रख के उस अवस्था को पाना चाहता है, इसलिए मैं कहता हूं, जब तक तेरा है, मम्मी पापा अजी सुनते हो, अरे कहाँ गए थे बच्चे, तब तक तू मूर्ख है, बंदर है, इस संसार का बंदर से भी गिरा हुआ। आत्मा का कुछ नहीं है बच्चे, बाकी तेरी अपनी मर्जी, तू इस राह पर चल रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम करो, हो ही नहीं सकता। परमात्मा के वचन ध्यान में रखना, देह और देह के सारे संबंध भूल कर, ये जब भूल जाएगा तब यात्रा आती है अपने को आत्मा समझकर। तुझे आत्मिक स्थिति में आना है तो पहली कंडीशन क्या है? सब भूल कर। जब तक तुझे याद है, इम्पॉसिबल है बच्चे, इम्पॉसिबल। तू मत कर प्रयास, पागलपन मत कर, होश में आ, फिर बाद में कहेगा फिर हमारा समय तो ऐसा ही व्यर्थ गया, तो तुझे विधि समझी नहीं, बाप ने क्या कहा है, देह और देह के संबंधों को भूल कर। बता जरा कब तूने प्रयास किया है सारे संबंधों को भूलने का अब तक की यात्रा में, कि मेरा कोई नहीं है, किया है? और कभी तेरे घर में ऐसी महसूसता तुझसे परिवार वालों को आई है कि आप हमें पहचानते क्यों नहीं, आपको पता नहीं हम कौन हैं आपके, ऐसे कभी परिवार वालों ने तुझे कहा है? देख जरा, चेक कर बच्चे, होश में आओ, देह और देह के संबंधों को भूल कर। बच्चे, तेरे देह के संबंधों में परिवार में संकल्प निकट कर रहा हूं, ब्रह्मा बाप ने भी जन्म लिया है फिर भी वो संबंध भूलना है, मैं नहीं जानते ये कौन है हमारे रिश्ते में, मम्मा ने भी जन्म लिया है तेरे परिवार में फिर भी कोई संबंध नहीं देह का। बच्चे सिंपल बात है, तू कहां पकड़ के बैठा है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, होश में आ जरा। पहले ये कंडीशन पूर्ण कर, फिर आगे बढ़, मैं आत्मा हूं, फिर बच्चे कुछ फीलिंग आएगी, वरना नहीं आएगी। देह और देह के संबंधों को रख कर तू आत्म की फीलिंग में जा सकता है? इम्पॉसिबल है बच्चे। तू रिश्तों में ही रहेगा, चाचा मामा काका मित्र संबंधी, माता पिता पति पत्नी बच्चा। बच्चे संभल कर रहना, यह राह किसकी है जो इन सारे भ्रमों से निकले हैं? सारे तू निकला है और नहीं निकला है तो आत्मिक स्थिति का प्रयास ना कर। ध्यान दे बच्चे इस बात पर, व्यर्थ है तेरा आत्मिक स्थिति का प्रयास करना। मुझे देख, मुझसे किसी को कौन सा देह का संबंध भासता है बताओ जरा? माता पिता कोई भासता है लौकिक, कि मैं मेरे लौकिक इस तन के संबंधों की स्मृति में हूँ? कभी याद आया है? कभी दिखा है? मैं तुझे भी तो वही कह रहा हूँ कि उस अवस्था में आ जा, उसके बिना कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। माफ करना मुझे, वचन वचन है इसलिए मैं कह रहा हूं। तू क्या कर रहा है बच्चे? देह और देह के संबंधों को जो भूलना है, ये पहला स्टेप नहीं कर रहा है। तू क्या कर रहा है? अपने को आत्मा समझ, अपने घर परम धाम में बाप को याद करने की चेष्टा कर रहा है। क्या कर रहा है? बाप को याद। बच्चे कुछ नहीं मिला है तुझे, याद आया है बाप, आ भी नहीं सकता। तुझे चित्र याद आया है, तुझे वीडियो स्मृति में आया है, ट्रांसलेट स्मृति में आई है, बाप याद नहीं आया। बच्चे ध्यान में रखना, देह और देह के संबंधों को जब तक तू नहीं भूलता, तू परमात्मा को याद नहीं कर सकता। चैलेंज करता हूँ, तूने अगर याद किया तो जो बोलेगा करने को तैयार हूँ मैं। तू जो बोलेगा, 84 जन्म तेरे घर में नौकर बनने के लिए तैयार हूँ, अगर तू मुझे याद कर पाया बिना पहले कंडीशन के। इसलिए संसार में मुश्किल कोई है जो मुझे याद करता है, क्योंकि तू निकला ही नहीं है नर्क से। नर्क से तेरा देह बाहर आया है, स्मृतियों में अभी भी नर्क है। फलाने माता पिता पति पत्नी बच्चे, अभी भी स्मृतियां नर्क में घूम रही है, और तू चाहता है स्वर्ग की प्राप्ति होगी क्या? नहीं बच्चे, इसलिए कोई पात्र नहीं है, न सतयुग के न त्रेता के, नौकरी के, नौकर चाकर के, प्रजा के पद के, सब अटके। मुश्किल कोई बच्चे हैं, कोई निकले है तो याद नहीं करते हैं, और कोई अटके है तो याद करते हैं। दोनों भ्रम में हैं, दोनों को यही लगता है कि हमने उस अवस्था को पा लिया। बच्चे भ्रम में हो, भ्रम में हो पूर्ण रूप से। इसलिए पहला जो चरण है, देह और देह के संबंधों को भूल कर उसे कंप्लीट करो, वो कंडीशन। समझ है बच्चे? मैं तुझे क्या योग सिखाऊं? पहला विधि विधान कंप्लीट नहीं है। मैं तुझे क्या ज्ञान दूं? आत्मा का ज्ञान चाहिए ना तुझे? आत्मा का ज्ञान भी तेरे बुद्धि में क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि पहली कंडीशन पूरी नहीं की है बच्चे। देह और देह के संबंधों को भूल कर आत्मा का ज्ञान बैठेगा ही नहीं बुद्धि में, तो सारे पॉइंट्स आगे पीछे करेगा बताने में, क्योंकि पहला चरण पूरा नहीं किया है और बहुत बच्चे इसी भ्रम में चल रहे हैं, बहुत बच्चे कि हमने बहुत कुछ पाया। बच्चे ध्यान में रखना, ब्रह्मा बाप के मुख से भी कब निकले शब्द महावाक्य, पाना था सो पा लिया, जब देह और देह के संबंधों को भूलकर अपने स्थिति में स्थित हो गए कि मैं आत्मा हूँ, उस समय यह महावाक्य निकला कि पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा। तेरे पास बहुत कुछ बाकी है, तूने कुछ नहीं पाया है। बच्चे होश में आ, तू भ्रम में है, तुझे 100 out of 1 भी नहीं दे सकता मैं, 0-1, तुझे कोई मार्क्स नहीं है बच्चे, कैसे दू बता जरा। पहला चरण ही पूरा नहीं हुआ है परीक्षा का, तू ही सोच। और सुनने वाले सभी बच्चे ध्यान में रखना, श्रीमत समझना या तुम्हें जो अच्छा लगे समझना, जब तक देह और देह के संबंधों को भूलते नहीं हूँ तब तक मुझसे वर्षा पाने का संकल्प आश गलती से भी नहीं उठाना। त्रेता के अंत के नौकर चाकर का वर्षा भी मिलेगा इसकी आशा नहीं रखना, ध्यान में रखना। देह और देह के संबंधों में रहकर मेरे ऊंच वर्षे की आशा नहीं रखना, ध्यान में रखना। समझ है बच्चे, द्वापर में भी सेमी बॉडी कॉन्शियसनेस था, पूरा नहीं था बच्चे, सेमी था। कलयुग में देख, अभी द्वापर में भी तुझे आना है ना तो भी सेमी बॉडी कॉन्शियसनेस चाहिए। समझ की बातें हैं बच्चे, चेक कर अपने आप को, तू कहाँ तक पहुंचा है, तेरी अवस्था देख। समझदार बन और बच्चे ध्यान में रख, आज नहीं तो कल ये कायदा निश्चित बनेगा कि देह और देह के संबंधों को जो भूले हैं वही बच्चे बाबा मिलन में आ सकते हैं। क्योंकि मैं किसी रिश्तेदार से मिलना नहीं चाहता जो किन्हीं रिश्तों में है, मुझे मिलना ही नहीं है, मेरी मर्जी भाई। तू कितना भी कह मेरा बाबा मीठा बाबा, मैंने कंडीशन लगाई है देह और देह के संबंधों को भूल, पूर्णता तब मैं तुझसे मिलूंगा, वरना क्यों मिलूं, नहीं मिलना है। समझ की बात है, लगेगा कायदा, जब तक चल रहा है चलता रहे, जिस दिन कायदा लगेगा जो करना है कर, कायदे तो कड़े लगेंगे बच्चे, एकदम कड़े, चिंता नहीं कर। तुझे लगता है कि आप तो बता दोगे उत्तर, देह और देह के संबंधों को भूल गए। तुझे गहरी नींद से उठाने के लिए कहूंगा किसी को और पूछूंगा आपके बच्चे कितने हैं, कितने बोला था आपने, आपके माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है। लौकिक नाम आया, परमानेंट घर, बच्चे कितने हैं, कि बच्चा शिव बाबा, माता पिता शिव बाबा ही। समझ की बात है बच्चे, गहरी नींद से उठाकर सवाल पूछा जाएगा। मैं कहता हूं ना, तो ठग है तो मैं महाठग हूं, तू चतुर है तो मैं महाचतुर हूँ, बाप हूँ, परमात्मा हूँ, ध्यान में रखना बच्चे। पहली स्टेप पूरी की है इतने वर्षों में, कम से कम एक साल में एक संबंध तो भूलता, और कड़े किए तूने, अब कौन निकालेगा? भाई मैं तो नहीं निकाल सकता, मैं तो बस ज्ञान देने आया हूं, निकालना मेरा काम नहीं। तुम निकलो, एक दूसरे को निकालो, तुम्हारी अपनी मर्जी, जो ठीक लगे। चिंतन कर बच्चे, पहली स्टेप जब तक पूरी नहीं हुई तब तक तू आगे नहीं बढ़ सकता। बच्चे देह और देह के संबंधों को स्मृति में रखें, तू आत्मिक स्थिति में नहीं है, देह अभिमान में रहकर और परमधाम में नहीं पहुंचा है, अपने घर की स्मृति में रहकर लौकिक स्थान, मुझ परम पवित्र को तू याद करने की चेष्टा कर रहा है, निराकार को शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? भाई क्या सिखाया है मैंने, समझ है बच्चे? कीचड़ में गंदा है और तू मेरा अभिषेक करना चाहता है, पहले कीचड़ से देहाभिमान के साफ तो हो जा, दूर तो कर उस कीचड़ को, देह अभिमान के, देह के सारे संबंधों का कीचड़ लेकर घूम रहा है और तू परमात्मा को याद कर रहा है, समझ की बात है? कभी लगा नहीं ब्रह्मा बाप ने इतना दिन रात मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा क्यों किया? लगा नहीं बच्चे? बच्चे ध्यान में रखना, जब तक ब्रह्मा बाप संपूर्ण रूप से देह के संबंध को भूलकर आत्मिक स्थिति में नहीं आए थे संपूर्ण रूप से, तब तक हमने ब्रह्मा बाप की याद को स्वीकार नहीं किया था और उनके कोई विकर्म विनाश नहीं हुए थे। विधि ही वही है, विधान भी वही है, फिर वो ब्रह्मा हो या तुम में से या दुनिया में से कोई भी हो, विधान नहीं बदलेगा न विधि बदलेगी, कोई भी हो। इसलिए बच्चे तेरे कोई भी किसी भी प्रकार के विकर्म विनाश नहीं हुए हैं, होश में आ, ध्यान दे। तुझे लगता है विकर्म विनाश हुए हैं पर नहीं हुए है, मैं साफ कहता हूं, विकर्म विनाश करने की स्टेट ही वो है परम धाम में आत्मिक स्थिति, निराकार बिंदी सितारा परम धाम में, वो भी वो है स्टेट, उसी स्टेट में विकर्म विनाश होंगे, कोई देह और देह का संबंध याद नहीं है, बस मेरा परम पिता परमात्मा, समझ है बच्चे? इसलिए विकर्म विनाश नहीं हुए। चेक कर तू अपने आप को, विकर्म विनाश होने का पहला लक्षण है, प्रमाण है, थोड़े भी हुए हो ना बच्चे, 100% अगर तेरे विकर्म है उसमें से 1% विनाश हुए है तो बच्चे 1% खुशी जरूर रहेगी, 1% बेहद की खुशी। 10% विकर्म विनाश हुए हैं तो 10% खुशी रहेगी। विकर्म विनाश होने का प्रमाण है खुशी। है तेरे जीवन में? चेक कर बच्चे, होश में आ। सब विधि से चलता है, इसलिए सभी को कहता हूं, किसी ने कुछ नहीं पाया है, किसी के हाथ कुछ नहीं लगा है, जरा होश में आओ, और तुम्हें अगर लगता है तुमने बहुत कुछ पाया है तो चलो ब्रह्म में, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ है बच्चे, तुझे जो ठीक लगे कर, मैं तो मेरे सूत्र बता रहा हूं, बाकी अंत में मिलेंगे, क्लियर हो जाएगा तू सही या मैं सही। समझ है? इसलिए बच्चे पहला पुरुषार्थ किया जाता है देहाभिमान और देह के सारे संबंधों को भूलने का। जब भूलोगे तब अपनी स्थिति में आओगे, याद रखकर अपनी स्थिति में नहीं आ सकते बच्चे। देह और देह के सारे संबंध याद रखकर तुम अपनी स्थिति में कभी नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल है। इसलिए मैंने उपाय भी बताया है, भूलने का एक ही उपाय है, हर संबंध बाप से, निराकार से। बात समाप्त। समझ है बच्चे? बच्चे ध्यान में रखना हाँ। और एक सूत्र बताता हूं, वो वाला। तुमने अपने जीवन में इस यात्रा में जितनी बार अपने लौकिक माता को माँ 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 कहा है, मम्मी मम्मी कहा है, मॉम कहा है, जितनी बार, कम से कम उतनी बार तुझे शिव बाप को दिल से, अनुभूति से माँ करके पुकारना पड़ेगा, निराकार को। तब वो संबंध की ऊर्जा निकल कर इस शिव बाप के संबंध में माँ की ऊर्जा जुड़ जाएगी। सेम पिता के लिए, क्योंकि तूने हजार बार कहा है तो उतनी स्मृतियां हैं, तो उन स्मृतियों के आधार पर तेरी बुद्धि क्या कहती है, क्या निर्णय देती है? शिव बाबा नहीं माँ, ये माँ। शिव बाबा नहीं पिता, ये पिता। बात समाप्त। तू कैसे आ सकता है उस अवस्था में? समझ है बच्चे? ध्यान देना इस बात पर, बाकी तेरी अपनी मर्जी, तुझे ठीक लगे तो कर। और बात दिल की है बच्चे, तेरे दिल से, दिल मना बुद्धि, बुद्धि से जो भाव जिस बात के लिए निकलता है, उस भाव से ही तेरा मन और तेरी बुद्धि प्रभावित होते हैं, और साथ में उस प्रकार से संस्कार इमर्ज होते हैं। ये माता, ये पिता। हाँ, शिव बाबा भी माता है, शिव बाबा भी पिता, भी नहीं है, वो है। इसलिए बच्चे पहला पाठ देख क्या है। कुछ ब्राह्मण आत्माओं ने तो लौकिक संबंध तो भुला दिए, अलौकिक ब्राह्मण परिवार में नए संबंध क्रिएट कर दिए, किसी दादी दीदी को अपनी माता बना लिया, किन्हीं वरिष्ठों को अपना पिता बना लिया। ये कहां से किया भाई तुमने? तुम्हें ज्ञान नहीं है क्या? माता पिता एक ही है, कोई दादी दीदी कैसे हो सकती है? और दादी दीदी को भी समझ में आना चाहिए, बच्चे तुम भी फंसोगे। कोई तुम्हें माँ माँ कह रहा है उसमें नहीं जाना, फंस जाओगे, क्योंकि तेरा बच्चा है ना अभी, वो अगर दुर्गति को पाया तो तू भी दुर्गति को पाएगा उसके साथ। इसलिए क्या वचन है, न बिसरो न याद करो। ध्यान में रखना बच्चे इन बातों को, गफलत नहीं करना इस राह पर। इसलिए बच्चे पहला पाठ आत्मा, उसमें भी पहला पाठ देह और देह के संबंध भूल कर पहला पाठ है, चेक करना, बाकी तेरी मर्जी। प्रश्न है, ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे है? उत्तर है, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो, इसलिए ही बाप को भोलानाथ कहा जाता है। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा है, वह बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं सदा ही देता है। भक्ति में कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता, ज्ञान में समझ से करते इसलिए सदा काल का मिलता है। बच्चे, तुम बच्चे चावल मुट्ठी देते हो और महल लेते हो। बच्चे, किन बच्चों को मैं चावल मुट्ठी के बदले महल देता हूँ पता है? पता करो। चावल मुट्ठी तो कोई भी दे देगा, तो क्या मैं महल दे दूँ? किनको देता हूँ वो भी पता करो, तुम चिंतन करना। चलो, तुमने भी कभी चावल मुट्ठी लगाया होगा, तो क्या तुम महल के पात्र हो? अगर हो तो किस बेसिस पर, कौन से आधार पर चेक करो। सुदामा को चावल मुट्ठी देकर महल प्राप्त हुए, कारण क्या था? कहानी को याद करना और समझने की कोशिश करना कभी कि ऐसी क्या बात घटित हुई होगी कि एक मुट्ठी चावल के बदले महल दे दिया। कुछ तो बात है भाई वहां पर, ऐसे थोड़ी कोई करता है। कल कोई असुर आएगा और एक मुट्ठी चावल लगाएगा, मैं महल दूं? चेक करना, चिंतन करना। कल कोई चोर डाकू आ जाएगा कहीं से डकैती करके और 10 मुट्ठी चावल लगाएगा, तो क्या मैं महल दे दूं? सोचना कभी, किससे देता हूं मैं? और मम्मा ने तो कुछ नहीं दिया, फिर भी उसको ऊंचे महल दे दिए, बात क्या है भाई? ये कैसा है कारोबार? चेक करना कभी, ये होता कैसे है? ना मिले तो कभी बाप बता देगा। सूत्र क्या है चावल मुट्ठी का, चिंतन करना। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रूह रिहान कर रहे हैं, वह ऐसे कहेंगे रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। तुम आए हो बेहद के बाप से राजयोग सीखने, इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए बाप की तरफ। यह है परमात्म ज्ञान आत्माओं के प्रति। भगवान वाच सालिग्रामों प्रति, आत्माओं को ही सुनना है, इसलिए आत्म अभिमानी बनना है। आगे तुम देह अभिमानी थे, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाते हैं। आत्मा अभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम समझ गए हो। बच्चे, कितनी बार शब्द आता है मुरली में आत्मा अभिमानी, एटलीस्ट उतने बार सारे दिन भर में आत्मिक स्थिति में आते हो क्या? 20 बार आत्मा अभिमानी, आत्मा शब्द आया तो कम से कम 20 बार सारे दिन भर में तुम आत्मिक स्थिति में आए हो, भले 1 सेकंड के लिए सही, लेकिन 20 बार आए हो क्या? अभी भी शब्द उच्चारण करते समय तुम्हें आत्मा दिखी है? चेक करो, समझ है बच्चे, तुम कौन सा ज्ञान सीख रहे हो, कौन सा पाठ पढ़ रहे हो? आत्मा अभिमानी शब्द भी उच्चारण हो रहा है फिर भी आत्मा नहीं दिख रही है। वाह ड्रामा वाह, वाह माया वाह, और क्या कहूं। समझ है बच्चे, कहां है तुम्हारी आत्मा अभिमानी अवस्था? कब आओगे? विचार करो बच्चे, बाकी ड्रामा चिंतन करना, वरना सब खो दोगे इस राह पर। इससे अच्छा संसार में जानवर रहते, खाते पीते मौज करते। यहाँ आए हो देवता बनने के लिए, तो ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण वही जो आत्मिक स्थिति में है, और जो आत्मिक स्थिति में नहीं है वो असुर है, राक्षस है, मनुष्य भी नहीं कह सकते उसे, असुर है वो। यहाँ बच्चे, या तो तुम ब्राह्मण या फिर असुर, मनुष्य नहीं रहोगे। यहाँ पहुँचे कि मनुष्यपना समाप्त, या तो मनुष्य से और नीचे गिरोगे या मनुष्य से और ऊपर उठोगे, दोनों में से एक होगा। तुम देखो अपने आप को, तुम कौन हो, ब्राह्मण या फिर असुर? विचार करना बच्चे। बहुतों को लगता है हम तो ज्ञान में चलते हैं, हमें सब पता है, सब जानते। बच्चे क्या जानते हो तुम? कुछ भी नहीं, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। और जो तुम्हें पता है वो भ्रम है, जो तुम जानते हो वो सब भ्रम है तुम्हारा। असली जानना तो आत्मिक स्थिति के बाद शुरू होता है, असली पता तो आत्मिक स्थिति के बाद पड़ता है। तब तक सब भ्रम है बच्चे, और भ्रम में तुम नाच रहे हो, गा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, रो रहे हो, हंस रहे हो भ्रम में, और तुम कहते हो तुम्हें सब पता है। कुछ नहीं पता बच्चे, कुछ भी नहीं। होश में आओ, बेहोशी में हो, होश में आओ। इसलिए जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं आते बच्चे, बाप को कुछ पूछना नहीं चाहिए उस रूप से। समझ है बच्चे, समझदार बनो, चिंतन करना, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। तुम क्या जवाब लोगे बाप से, क्या स्पष्टता लोगे, क्या एक्सप्लेनेशन लोगे? तुम होश में नहीं हो, बेहोश हो। तुम जो बेहोश हो, माया के नशे में हो, उससे मैं क्या समझाऊं? और अगर मैंने समझाया भी तो बेहोश व्यक्ति क्या समझेगा? व्यक्ति बोल रहा हूं क्योंकि तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो, क्या समझेगा भाई? इसलिए बच्चे होश में आ, सबसे पहले पूरा पूरा, बाकी बच्चे ड्रामा चलते रहो, खुश रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को पदम गुना पदम दीदी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।
धारणा के लिए मुख्य सार है, एक नंबर, वशीकरण मंत्र सबको देना है। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है। इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी अंगुली देनी है। दो नंबर, संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने की ड्रिल करनी है। बाकी योग योग कह मूंझना नहीं है। वरदान है सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ। आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भवा। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है। और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज़्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा में नूंद है। आने ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न व पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न न समझ, अनुभव की उन्नति हो रही है इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन है, विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और सत्य ज्ञान की सत्य समझ में आओ, वरना ड्रामा हो जाएगा, पछताना पड़ेगा। होश में आओ बच्चे और सही विधि विधान से चलते रहो। अच्छा, ओ शांति।
वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति।